ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय त्यक्त्वा सुदुष्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मीष्ट आर्जवचसा जगदातरण्यम् माया मृगम् दैतेऽप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् एक बार जनकपुर में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था जिसमें भगवान ऋषभ देव के नौ योगेश्वर पुत्र पधारे थे। महाराज निधि ने उनसे प्रश्न किया उस यज्ञ में। एक प्रश्न यह था कि भगवान किस युग में किस नाम से किस वर्ण के और किस विधि से पूजे जाते हैं। कृपा करके बताइए। इस प्रश्न का उत्तर श्री करभाजन जी दे रहे हैं। तो वे सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग के आराध्य का वर्णन किए। अंत में कलयुग के कौन आराध्य हैं, भगवान का कौन सा रूप है और कौन से वर्ण है, किस लीला को करने वाले, उनका नाम क्या होता है, इसका वर्णन करते हैं। कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम सांगु पांगास्त पार्षदम जज्ञ संकीर्तन प्रायद जजंती सुमेधसः। ये उत्तर था उनका। कलयुग में भगवान की आराधना होती है कृष्ण वर्णम, उनके शरीर का रंग कृष्ण है, कृष्ण वर्णम त्रिशा अकृष्णम, परंतु शरीर की चमक है काली नहीं है, श्याम नहीं है, उज्ज्वल नीलमणि की तरह है, चमक रहा है, त्रिशा अकृष्णम। सांगो पांगास्त्र पार्षदम वे अकेले नहीं अवतरित हुए हैं, अपने अंग उपांग और पार्षदों के साथ अवतरित हुए हैं। ऐसे प्रभु की आराधना बुद्धिमान लोग संकीर्तन द्वारा करते हैं। संकीर्तन के दो अर्थ हैं, एक नाम संकीर्तन और दूसरा भगवान का गुण वर्णन कथा, इसको संकीर्तन यज्ञ कहते हैं। तो संकीर्तन यज्ञों के द्वारा ऐसे प्रभु की आराधना होती है। यह सब वर्णन करके करभाजन जी दो श्लोक में प्रभु की वंदना किए हैं। उन दोनों श्लोकों का अर्थ है प्राय सभी आचार्य जो हमारे गौड़ी आचार्य हैं वे तीन अर्थ करते हैं। इस कलयुग के तीन आराध्य हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री रामचंद्र इस कलयुग के आराध्य हैं। एक श्लोक में वे कहते हैं जिसकी आवृत्ति हमने किया, त्यक्त्वा सुदुष्टिर सुरेप्सितराज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्जवत्सा जदगादरण्यम। जो प्रभु धर्मिष्ठ हैं, तो हम एक एक का अर्थ करें। पहले श्री चैतन्य महाप्रभु पर इसका अर्थ देखिए। त्यक्त्वा त्याग कर, सुरेप्सितराज लक्ष्मी देवता भी जिनकी इच्छा करते हैं, जिनके कृपा कटाक्ष को चाहते हैं, ऐसे विष्णु प्रिया को छोड़कर भगवान अगाध अरण्य झारखंड वन में आ गए, अरण्य में आ गए। अरण्य का अर्थ होता है जहां कोई झगड़ा नहीं है, जहां रण नहीं है, जहां रण नहीं है, युद्ध नहीं है, उसको अरण्य कहते हैं। ये सिटी आदि में रण है, झगड़ा है, यहां से बाउंड्री हमारी है, वो तुम्हारी है, कोर्ट जाते हैं, कहां कहां ऐसा हमेशा झगड़ा चलता है। लेकिन अरण्य जिसमें कोई रण नहीं है, युद्ध नहीं है, वन को कहते हैं। तो भगवान चैतन्य महापुरुष अरण्य में चले गए, किसको त्याग कर, श्री लक्ष्मी जी को, विष्णु प्रिया जी को त्याग कर चले गए, जो सुरक्षित, जो देवताओं के द्वारा आराधित थे, देवता भी उनकी कृपा चाहते हैं, ऐसे लक्ष्मी को छोड़कर चले गए। धर्मीश वे धर्म का पालन करने वाले हैं, अतः उन्होंने शुक्लांबर ब्रह्मचारी की आज्ञा को माना। शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने उनको साप दिया था कि तुम्हारी गृहस्थी नष्ट हो जाए। गृहस्थ धर्म का त्याग करके चैतन्य महाप्रभु वन में चले गए। आर्ज बचसा अपने परम पूज्य आर्ज शुक्लांबर ब्रह्मचारी के वचन से वचसा जगदादरण अरण्य में आए। माया मृगम दैत्य चितमन धावत, माया के द्वारा जो नचाए जा रहे हैं, मृग का मतलब है नचाना, अथवा माया के द्वारा जो पशु बना दिए गए थे, ऐसे झारखंड वन में उन पशुओं के पीछे जो हाथ उठा करके दौड़ते थे, उनका उद्धार करते थे। माया मृगम दैत्य शितमन धावत, अत्यंत दयालु होने के कारण मायाबद्ध पशु तक को जिन्होंने कृष्ण प्रेम दान दिया, ऐसे वंदे महापुरुष से चरणारविंदन, ऐसे महापुरुष की जो स्वयं भगवान हैं, उनके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। कलयुग के आराध्य का वर्णन करते करते उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्ण परक इसका अर्थ करते हैं। त्यक्त्वा सुदुष्टिर सुरक्षितराज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आद्य वत्सा जदगाधरणी, त्यक्त्वा सुदुष्टिर सुरक्षितराज लक्ष्मी। मथुरा का राज्य इतना वैभवपूर्ण था, उस राज्य को देवता भी चाहते थे, देवताओं को भी वो सुख सुलभ नहीं था, लेकिन ऐसे राज्य को, मथुरा के अधिकार को, द्वारका के राज्य को बाद में छोड़ करके जो अरण्य चल में चले गए, वृंदावन में चले गए, गोकुल महावन में चले गए, राज्य को छोड़ करके महावन में चले गए, वृंदावन में चले गए, जदगादरण्य धर्मिष्ठ आर्ज वचसा जदगादरण्य, आर्ज वचन से गए। आर्ज का है अर्थ है अपने परम पूज्य पिताजी श्री वसुदेव जी के कहने से चले गए। जब भगवान का जन्म हुआ चतुर्भुज रूप में, तो वसुदेव जी कांपने लगे, कहे कि इस रूप को छिपा लीजिए, आप कहीं चले जाइए। तो उनकी बात मान करके भगवान गोकुल में आ गए। बाहर से ऐसा लग रहा था कि अपने को बचाने के लिए आ रहे हैं, कंस के भय से आ रहे हैं, लेकिन कंस का भय कैसे हो सकता है। तो वृंदावन में आ गए और वहां अपनी ही स्वरूप शक्ति से पशु बने हुए, गाय आदि बने हुए पशुओं के पीछे पीछे गोचारण करते हुए चलते, माया मृगम दैत्य चितमन भाव, अत्यंत दया के कारण, दयालुता के कारण जो पशुओं के पीछे पीछे चलते। ब्रज में तो कृष्ण पशुओं के पीछे ही चलते हैं, दिन भर ही उनका काम है। ऐसे महापुरुष के चरण कमल की मैं वंदना करता हूं। महापुरुष पुरुष तो सभी जीव है, लेकिन महापुरुष भगवान है, अथवा कर्णोदक साई, गर्भोदक साई, चिरोदक साई सब पुरुष हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु ये तो महापुरुष है, स्वयं भगवान। तो प्रभु पशुओं के पीछे पीछे चलते। अब भगवान श्री राम पर इसका देखा, त्यक्त्वा सुदुष्टिर सुरक्षितराज लक्ष्मी, दशरथ धन सुन धन लजाए, अयोध्या का साम्राज्य छोड़ करके जिसकी इच्छा सुन लोग देवता लोग करते थे, उसको छोड़ करके जो आज बक्सर अपने पिता श्री दशरथ जी की वचन दशरथ जी के वचन मानकर अगाध अरण्य जो दंडका रहने में आ गए, वन में आ गए, और माया मृगम कपट से मृग का वेश धारण किए हुए मारिच के पीछे जो दौड़ रहे थे, ऐसे महापुरुष के मैं चरण कमलों की वंदना करूं। वंदे महापुरुष के चरणारविंद। तो दो अर्थ तो ये संस्कृत भाषा है वो लगता है ठीक है, लेकिन लोक में जो प्रसिद्ध है वो यही है कि भगवान श्री राम अयोध्या का राज्य छोड़कर और माया मृग के पीछे दौड़े थे। कैसे? दैतया इप्सितम, क्योंकि दैता ने सीता जी ने इच्छा किया उस मृग की, जो कपटी मृग है मारीच, मारीच बड़ा असुर था और कपट से मृग का वेश बनाया। रावण उसके घर पर गया उसे सहायता लेने के लिए, सुरपरंखा का नाक कान जब काट लिया गया था तो रावण सोया नहीं रात भर, सवेरा होते ही वो विमान से मारीच के पास गया और मारीच उसका मामा लगता है, लेकिन रावण जब गया रावण ने प्रणाम नहीं किया मामा, वो तो असुर था राक्षस था, प्रणाम क्या कर तो पूछा मारीच कि राजन आप अकेले कैसे आए? राजा चलता है तो मंत्रियों के साथ चलता है, कई लोगों के साथ, सेना के साथ, आप अकेले कैसे आए? तो उसने कहा कि बहुत सीरियस काम है इसलिए आया हूं। पहले सुनो ध्यान से, अयोध्या से दो लड़के आए हैं, बहुत बदमाश निकले हैं, बहुत बलवान हैं, खरदूषण कृष्णा का वध कर दिए और हमारी बहन का नाक कान भी काट लिए, कितनी शैतानी कर रहे। तो तुम एक काम करो, तुम कपट से मृग बन करके सुनहला गोल्डन मृग और सीता के आश्रम के पास चढ़ो, जिसे तुमको देख करके राम की जो पत्नी है लुप्त हो जाए सीता, और तुमको पकड़ने के लिए जब राम चलेगा ये मारने के लिए, उसी समय मैं उस राजकुमारी का हरण करना चाहता हूं। इतना सुन करके मारीच मामा हंसने लगा, कहने अच्छा हुआ भांजा तुम मेरे पास आ गए, मैं तुम्हारा हितैषी हूं। रावण कहा भांजा मत बोलो, मैं राजा हूं, राजा किसी का भांजा नहीं होता है, और मैं तुमसे सुनने नहीं आया हूं, मैं तुमको आज्ञा देने आया। फिर भी मारीच बोलने लगा कि मेरा तुम्हारे प्रति स्नेह है, मैं तुम्हारा मामा लगता हूं, इस कारण से मैं तुमको एक हित की बात बताना चाहता, ये जो राम है ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं है। विश्वामित्र मुनि का यज्ञ डिस्टर्ब करने के लिए मैं गया था सिद्धाश्रम बक्सर, और उस समय यह लड़का आया था यज्ञ की रक्षा करने लक्ष्मण, और एक साधारण तिनका से एक सीख से उसने मार दिया बाप, और उसी में मुझे आंधी आ गई, मैं सात समुद्र पार उड़ करके गिरा, इसी तरह जान बच गई। और भी तारका आदि का उसने वध किया, या किया शिव जी के धनुष को तोड़ा, उसको तोड़ना कठिन था, और स्वयं परशुराम जी उसे क्षमा मांगे हैं, जो क्षत्रियों के प्रसिद्ध दुश्मन माने जाते हैं, उन्होंने क्षमा मांगा। ये राम है मनुष्य नहीं है, ये साक्षात भगवान है, इनसे बैर करना ठीक नहीं है। तुम ऐसा काम मत करो, हमको मत कहो ये सब करने के लिए। रामायण में ये बहुत बड़ा दोष था कि किसी की सुनता नहीं था और निर्णय बहुत जल्दी लेता था। उसने कहा कि सुनो, मैं तुमको इसीलिए क्षमा कर रहा हूं ये उपदेश करने पर कि मैं तुम्हारा भांजा हूं, इसीलिए क्षमा कर दिया, मामा हूं इसीलिए, नहीं तो अब तक मैं तलवार से काट दिया होता था। इसे वाल्मीकि रामायण में लिखा था, अब तक मैं नहीं छोड़ा होता, लेकिन अब क्या करें तुम मेरे मामा, पर सुनो तुम जाते हो कि नहीं, तुम जाओ, मैं जो प्लान कर चुका हूं उसे करना है, सीता का हरण करना है, तुम जाओ और मृग बन करके लुभाओ, तुम्हारी छे अब अंत में देखा कि नहीं बदलेगा तो गाली देते हुए गया। उसने देखा कि अब नहीं जाता हूं तो ये काट डालेगा और जाता हूं तो भगवान जान के हाथ से मारा जाऊंगा, तो मारिच ने यही निश्चय किया कि ठीक है दोनों हालत में तो मुझे मरना ही है, तो बेटर है राम के हाथ से मर, इसके हाथ से नहीं मर। तो इसलिए वो रावण को गाली देने लगा, खूब बोला है, कहा कि अधम तुम अब मरोगे, निश्चित मरोगे, तुम बहुत अटपटान मार्ग पर पैर रख चुके हो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, ये नहीं सुन रहे हो, तुम्हारे जैसा बुद्धू इस संसार में कोई नहीं है, तुम कोई चांस था राजा बन गया लेकिन अब तुम बचने वाला नहीं है। लाउ कहा ठीक है ठीक है जाओ, वो तो काम करना चाह रही, ठीक है जाओ मैं जा रहा। तो मारिच गया और जा करके बहुत ही सुंदर मृग बना, बड़ी बड़ी आंखें और शरीर पर कई रंग, मुख्य रंग था गोल्डन, बहुत विचित्र मृग बना। वैसे मृग को देखकर कोई भी व्यक्ति लुब्ध हो जाएगा। तो आश्रम के बिल्कुल निकट पंचवटी में जहां भगवान रहते थे पत्नी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ, तो चरने लगा, कभी खुदा कब दूर जाता था, कभी निकट आता था, उसे दिखता था, ये सोचता था कि सीता की दृष्टि पड़े मुझ पर, तब तक पड़ गई दृष्टि, सीता जी की दृष्टि पड़ी तो सीता जी कहती हैं, हे प्रियतम आप देखिए ये मृग कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, आप मेरे आश्रम में रहेगा, इसको हमें पालतू मृग बनाऊंगी, आप इसको पकड़ कर लाइए, आप इसको पकड़ कर लाइए। तो भगवान राम कहते हैं, सीता इस घोर वन में अनेक राक्षस कपटी वेश धारण करके घुमा करते हैं, और लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण देखो ये मृग है, हमें तो लग रहा है कि राक्षस, इसकी जो देखने की शैली है ना ये बहुत कपटपूर्ण है, और भगवान पाते हैं जो देख रहा है, और कभी बड़ा हो जा रहा है, कभी छोटा हो जा रहा है, कभी बहुत दूर अकस्मात गायब हो जाता है, फिर आ रहा है, हमें लगता है कि ये कोई राक्षस, ये सर्वज्ञ ईश्वर ये सब समझ ही रहे हैं, लेकिन अब लक्ष्मण जी भी कह देंगे हाँ हाँ निश्चित है कोई राक्षस है, लेकिन उसका वध कर दीजिए, उसको खत्म कीजिए, ये राक्षस है, ये हरि नहीं। तो फिर समझाते हैं भगवान सीता जी, सीते देखो यह कोई महामायावी राक्षस है, और मैं अगर इसके पीछे जाऊंगा तो हो सकता है कोई दुष्ट राक्षस घुमा करते हैं इस वन में, वे तुम्हारा हरण कर सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ करके जाऊंगा नहीं। लेकिन सीता जी रोने लगी, बहुत उनके रुदन का वर्णन है कि नहीं मेरा जब विवाह हुआ तो मैंने अयोध्या से निकाल दी गई आपके साथ, मैं चाहती हूं कि एक हरिण रखूं उसको पालू पोसूं, तो कोई कोई आजकल की स्त्रियां कुत्ता रखती जबकि उसको रोज मांस खिलाओ दूध खिलाओ, हट करने लगे, और हमारा कौन है, आप हमारी इच्छा पूरी करेंगे, आप ही हमारे सब कुछ है, हमको लाइए पकड़ करके लाइए, और नहीं पकड़ में आएगा तो मार करके लाएंगे, क्योंकि हम लोग कोई धन लेकर नहीं आए हैं वन में। इतना सोना जब हमारे पास रहेगा तो काम आएगा। उसका चाम जो था गोल्डन था, गोल्ड था, तो सीता जी यहां तक पाते हैं कि हम लोग तो वनवासी हैं, हम लोग का राज चला गया है, चला गया, लेकिन इतना सोना रहेगा तो काम आएगा। इसलिए किसी भी हालत में चाहे इसको पकड़ कर लाइए चाहे मार कर लाइए, अब जाइए जल्द। जब इस तरह से हट किया सीता ने तो भगवान कहे ठीक है। फिर लक्ष्मण जी को कहते लक्ष्मण यह जो वन है वह घोर मायावी राक्षसों से भरा हुआ है, कभी भी कोई सीता को खा सकता है या हरण कर सकता है, अतः तुम देख रेख करते रहो। मैं जा रहा हूं इसको पकड़ने के लिए, अगर ये नहीं पकड़ में आएगा तो इसको मैं बाण से मारूंगा, लेकिन तुम सीता को छोड़कर जाना मान। भगवान के अद्भुत लीला, चाहते थे कि छोड़ करके जाए, लेकिन ऊपर से सर कह रहे हैं इसको छोड़कर मत जाना, बहुत खतरनाक स्थान है यहाँ। भगवान चले गए, भगवान को देखते ही वो बहुत तेज गति से भागा और श्रीराम भी बहुत तेज गति से पीछा किए। भगवान उस मृग का जो पीछा किए हैं वो इतना पैंतरा बदला है, इतना दूर भगा ले गया है, कभी निकट आता था कभी फिर दूर, और भगवान नंगे पांव उस वन में चल रहे थे। उस समय उनके पैरों में कांटे चुभे थे। इसी का स्मरण करते हुए सुखदेव गोस्वामी राम कथा शेष किए हैं 9 स्कंद में। आज तक भक्त जब भगवान के चरण कमल का स्मरण करते हैं यही याद करते हैं कि उनके पैर में जो कमल से भी अधिक सुकुमार है कांटे चुभे हुए। सीता जी बाद में उसने कांटों को निकालना चाहती थी, भगवान ने कह दिया कि नहीं, तुम्हारा तो काम है मेरे चरणों में लाना, जो मेरे चरण में आ गया है उसको निकालना तुम्हारा काम नहीं। ठाकुर नहीं निकाले गए, भगवान इतने शरणागत वत्सल हैं कि कांटे भी शरीर के अंदर रह गए। जबकि वास्तव में भगवान का पूर्ण आत्मा है, आत्मा में शस्त्र नहीं काट सकता है, आत्मा में छेद नहीं कर सकता, लेकिन भगवान की एक अद्भुत लीला है। कंटक विद्ध चरम कमलों को अपने भक्तों के हृदय में स्थापित करके भगवान साकेत गए। यह जो लीला है माया मृग के पीछे चलने की, जबकि वे सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, उन्हीं के प्लान से सब हो रहा है, इसलिए भगवान ऐसे दौड़े 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 अंत में बहुत दूर, इतना इतना दूर गया, फिर वहां से भागा, फिर आया, केवल इतना ही दूर रहा कि जहां से आश्रम पर उसकी आवाज चली जाए। तो भगवान राम ने बाण मारा उसको, बाण मारा मारिश को, तो उसने जोर से रोते हुए पुकारा, हा लक्ष्मण, हा सीता, सीते। वो राम की आवाज की नकल कर लिया, राम ऐसे बोलते होंगे, तो राम के स्वर में हा लक्ष्मण पुकारा और हा सीता। तो सीता जी ने सुना, तो लक्ष्मण ध्यान से सुनो, सुनो सुनो, तुम्हारे भैया की आवाज है, वो कोई संकट में पड़ गए हैं और तुमको पुकार रहे हैं सहायता के लिए, तुम जल्दी जाओ और उनकी सहायता करो। लक्ष्मण भी कहते क्या आप बात कर रहे हैं, राम पर संकट आ सकता है, तीनों जगत के देवता और राक्षस सब मिल करके भी राम को संकट में नहीं डाल सकते, अब ऐसी बात मत बोलिए, किसी भी संकट में नहीं। और उन्होंने मुझे विशिष्ट रूप से आज्ञा दी है आपकी रक्षा के लिए, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। इस पर सीता जी कुछ कठोर बोलने लगी, तुम साफ सुन रहे हो राम पुकार रहे हैं, हा लक्ष्मण कर रहे हैं, हा सीता कर रहे हैं, और कहते हो कि संकट में नहीं है। समझाते हैं राम की महिमा,
राम कभी भी संकट में नहीं पड़ सकते हैं, तुम चिंता मत करो। तो सीता जी इस पर कुछ कठोर बोली लक्ष्मण जी को, तो सीता जी बोले, लक्ष्मण मुझे पता नहीं था कि अयोध्या से तुम इसी घात के लिए मेरे साथ आए हो। मैं समझ गई तुम चाहते हो कि राम मर गए तो तुम मुझे रख लोगे। इतना सुनना था लक्ष्मण जी कान बंद कर लिए। माता जी ये क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं, तुम चाहते हो कि नहीं। इतना सुनकर के लक्ष्मण जी और भगवान की प्रेरणा से दिख गए, उनका मन बदल गया, उनको नहीं जाना चाहिए, लेकिन वे चले गए। जाने के पहले सीता जी को समझाए कि इस रक्षा रेखा के बाहर मत जाना कहीं भी, तब तक हम आ रहे हैं राम के साथ। लक्ष्मण जी बहुत दुखी हो गए सीता के पास, और वे कहते हैं सीता माता जी मैं आपकी बात को इसीलिए सह रहा, इसीलिए क्षमा कर देता हूं कि आप स्त्री हैं, अन्यथा कोई पुरुष ऐसा कह दिया होता तो मैं उसका गला काट दिया। लक्ष्मण जी यहां तक कहते हैं कि आप स्त्री हैं इसीलिए क्षमा कर रहा हूं, क्योंकि बेचारी स्त्रियों को कम बुद्धि होती है। लक्ष्मण जी ने क्षमा कर रहा हूं, वो चले गए, उनको प्रणाम करके और चले गए। तो भगवान उधर से मार करके मारिच को और उसका चमड़ा मृत चर्म ले करके आ रहे थे। लक्ष्मण जी तो देखा भगवान ने, तो लक्ष्मण तुम क्यों आ गए, हमें तो लगता है कि कोई ना कोई राक्षस सीता को खा गया होगा, ये हरण कर लिया होगा। घोर बन में राक्षस घूमते रहते थे, सीता को चुराने के लिए या इतना कोमल शरीर था मांस था खाने के लिए घूमते रहते, नर आहार रजनी चल कर आए। भगवान कहते हैं मुझे तो विश्वास है कि अब कोई न कोई खा गया होगा, तुम क्यों आए, क्यों आए। सीता जी ये बोलती हैं, अरे लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैं क्या करूं, मैं नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसे कहा, इस तरह की बात कहा कि तुम अयोध्या से इसी पर्पस से आए हो। तो भगवान कहे बेचारी वो तो स्त्री है ही, लेकिन तुम कौन बुद्धिमान हो, इसकी बात से उद्विग्न होकर के आ गए। लक्ष्मण तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, तुमने अच्छा नहीं किया, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो हाथ में मृगचर्म लिए के भगवान श्री राम रोते हुए वहीं से आए आश्रम में, सचमुच आए तो रावण सीता का हरण कर। तो यहां पर करभाजन जी यह कह रहे हैं कि माया मृगम दैत्य मनोधावत वंदे महापुरुष के चरणारविंद। भगवान श्री राम की याद कर रहे हैं कि कलयुग के लिए आराध्य हैं, और श्रील प्रभुपाद जी ने मुख्य रूप से यही तीनों नीति की स्थापना की, तीनों देव भगवान श्री राम श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु, और जगन्नाथ जी तो कृष्ण ही है, तो तीनों कृष्ण ही है वास्तव में, लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी तो प्रकट ही कृष्ण नाम से हैं जगन्नाथ। तो सारी दुनिया में श्रील प्रभुपाद जी ने तीन विग्रह स्थापित किया, श्री कृष्ण को राधा रानी के साथ और गौर निताई चेतन महाप्रभु के नित्य प्रभु के साथ, और श्री राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी के साथ कई जगह स्थापना है। इस प्रकार से ये श्रीराम कलयुग के आराध्य हैं। कैसे भगवान का अवतार हुआ, मैं तो इस सत्र में चाहता था यही कहना कि भगवान श्रीराम का अवतार किस प्रकार हुआ, क्योंकि रामनवमी है, रामनवमी का मतलब नवमी के दिन भगवान श्रीराम प्रकट हुए स्मृति पर अयोध्या में। नवमी होम बार मधुमास, अयोध्या में भगवान का जन्म हुआ, किस कारण से जन्म हुआ और कौशल्या तथा दशरथ कौन थे, यह कहा जाता है कि महाराज मनु जो स्वयं हुआ मनु है, वे दशरथ जी बने थे एक बार। और वैसे प्रसिद्ध कथा यह भी है कि कश्यप जी दशरथ बने और माता अदिति कौशल्या बने पुत्र भाव से। इसके साथ ही साथ एक कल्प में स्वयंभू ब्रह्मा जी के पुत्र मनु महाराज दशरथ बने और शत्रुपा जी कौशल्या बने। स्वयंभू मनुवर शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, जिन्होंने विश्व सृष्टि किया मनु महाराज में ब्रह्मा जी के पुत्र, वे राज्य छोड़कर के तप किए और तप करने पर भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने वर दिया। तो कथा इस प्रकार की है कि मनु महाराज बहुत काल तक शासन किए। इनके एक पुत्र का नाम है उत्तानपाद, नृपोत्तानपाद सुत जासु ध्रुवहर भगत भयव सुखता। उत्तानपाद इनके पुत्र थे, जिनके पुत्र ध्रुव महाराज थे उत्तानपाद के पुत्र, और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे ध्रुव। लघुसुत नाम प्रिय व्रत पाढ़ वेद पुराण प्रशंसा ही जाए। और छोटे बेटा प्रियव्रत महाराज हुए, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुराण में तो श्रीमद् भागवत, पुराणों में और वेदों में प्रियव्रत महाराज की बहुत प्रशंसा है। और देवहूति पुनीता से कुमारी जो मुनि कर्तन का प्रिय नारी, और देवहूति जी इनकी पुत्री थी, तीन पुत्रियों में एक पुत्री जो कर्दन जी को ब्याही गई। और आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरल गई कपिल कृपाला, वो उनकी पुत्री इतनी महिमा मई गई, उसने अपने पेट में भगवान को धारण किया, भगवान कपिल देव जन्म लिया, जो तत्व विचार में बहुत निपुण है। तो बहुत काल तक राजा मनु राज्य किए, लेकिन इसको रामायण में कहा जा रहा है कि होइ न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गय हरि भक्ति बन। महाराज मनु को बहुत दुख लगा, होइ नहीं विषय वैराग, वैराग नहीं हो रहा था, चौथापन आ गया राज करते करते। तो हृदय में बहुत दुख लगा कि भगवान कृष्ण की भक्ति के बिना मैंने जीवन चला, ये सोच रहे। यद्यपि भक्ति वो कर रहे थे, फिर भी जो जितनी भक्ति करता है उसको यही अनुभव होता है कि मैं भक्ति नहीं कर रहा। और जो भक्ति नहीं अच्छा से करते हैं वो सोचते हैं कि हम तो बहुत भक्ति कर रहे हैं, ये उल्टा होते हैं। भक्ति करता है उसको यही अनुभव होता है कि मेरा तो जीवन बेकार जा रहा है, नहीं करना। तो बल बस राज सुत ही तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन दीन्हा। जबरदस्ती प्रियव्रत महाराज को राज दिए ब्रह्मा जी को बुला करके, पांचवें स्कंध में कथा है, प्रियव्रत महाराज को राज दिया जबरदस्ती। बलबस राज सुतही तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन दीन्हा, और अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ वन में चले गए। वन में चले गए, कहां गए? तीर्थ वर नैमिष विख्याता परम पुनीत साधक सिद्धिदाता। एक तीर्थ है भारतवर्ष में यहीं पर लखनऊ के पास है, जिसको नैमिषारण्य कहते हैं, नैमिष वन में, वहीं पर महाराज मनु गए। कहां से गए? कानपुर से गए। बिठूर गंगा जी के तट पर एक प्राचीन शहर है जो ध्वस्त हो गया है, बिठूर मनु महाराज की राजधानी थी बरहिष्मतीपुर, सुनाम था बरहिष्मतीपुर, इसीलिए उसको बिठूर बिठूर कहा। तो वहां से नैमिषारण्य में गए, वहां से नैमिषारण्य बहुत दूर नहीं है, वो गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि तीर्थ वर नैमिष विख्यात है, तीर्थों में एक श्रेष्ठ तीर्थ है नैमिषारण्य, जो अति पुनीत है और साधकों को, भगवान के भक्तों को सिद्धि देता है, भगवान का धाम देता है। तो वहां वे गए और जब वहां पहुंचे तो ये कहते हैं वहां बहुत से संत समाज रहते थे, तो हर्षित मन से बहुत ही उमंग के साथ वे गए नैमिषारण्य और पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, धेनुमति मतलब गोमती, वहां जाकर के गोमती में स्नान किए। आज भी गोमती नदी वहां बहती है, हम लोग भी स्नान किए हैं, तो गोमती में स्नान किए, स्नान करके और फिर उस क्षेत्र में जो जो तीर्थ थे, जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए मुनि ने सकल साधन करवाए, तो मुनि लोग सब जगह घुमाए, ए तीर्थ ए तीर्थ। जैसे वृंदावन में हम लोग जाते हैं मथुरा में, तो वर्षा में है, नंदगांव है, गोवर्धन है और गोकुल आदि, तो नैमिषारण्य में भी आसपास में बहुत से तीर्थ है, मुख्य तीर्थ है चक्र तीर्थ। तो और भी सब तीर्थ घुमाए, मुनि लोग करवा रहे थे महाराज स्वयंभू को, मनु महाराज, तो गए तीर्थ किए। कृष्ण शरीर मुनि पट पर ध्याना, सत समाज में तो सुन ही पुराना। नैमिषारण्य में मुख्य काम क्या था मनु महाराज का, एक तो आहार कम करते थे इसलिए कृष्ण शरीर हो गया, दुबला पतला शरीर, तपस्या करते थे। और मुनि पट परिधाना, मुनि लोग जैसे वस्त्र पहनते हैं वैसे वस्त्र पहनते थे। मुनि लोग कोई पुराना कपड़ा कोई फेंक दिया है उसको लपेट लेते हैं, या केला पहनते हैं, बहुत साधारण कपड़ा पहनते हैं। भाल न खाई दो और भाल न पड़ी दो, चैतन्य महाप्रभु विरक्तों के लिए कहते हैं अच्छा मत खाना और अच्छा मत पहनना, भाल न खाई दो और भाल न पड़ी दो। रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु उपदेश दिया। तो महाराज मनु नैमिषारण्य में मुनि पट पहनते थे, साधु की पोशाक। तो काम क्या करते थे, सत समाज नित सुन ही पुराना, संत के समाज में, भक्तों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। पुराण से तात्पर्य है श्रीमद् भागवत। साधु का यही काम है, साधारण रहना, साधारण खाना और नित्य भागवत सुनना, ये काम है सत समाज नित्य सुनना पुराना। और इसके साथ जप करना, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकर दंपति मन यति लाग। और जप करते थे, क्या जप करते थे, द्वादशाक्षर महामंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जप करते। ये भी महामंत्र है, इसको बार बार महामंत्र कहा गया है। और द्वादशाक्षर मंत्र इसको जपते थे, द्वादश अक्षर मंत्र को नहीं जप सहित अनुराग, अनुराग के साथ जप करते थे। अनुराग से जपना चाहिए, अनुराग मतलब एकदम तहे दिल से भगवान में मन लगा करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकज दंपति मन तिलक। और वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में मन लग गया। यह चरण कमल से तात्पर्य है समग्र सौंदर्य शरीर, उसी का चिंतन करते थे। वाणी से नाम जप करते थे, मन में भगवान के सुंदर रूप का चिंतन करते थे और कान से श्रीमद् भागवतम से सत्य समाज में कृषि नहीं पूरा। इस तरह से ये तपस्या कर रहे हैं। कर ही आहार मूल फल कंद सुन रही ब्रह्म सच्चिदानंद। ये राजा थे सारी पृथ्वी के, जाकर मैं विशारण में कंद मूल फल का आहार करते थे। वो भी कोई इम्पोर्ट करके नहीं मंगाते थे कहीं से, वही जंगल में जो मिलता था वही खाते थे। आजकल जो सुनते हैं फल कहां से आ रहा है, सेब उधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, इस तरह का जीवन उनका नहीं था। कंद मूल फल खाते थे और सुन रही ब्रह्म सच्चिदानंद, पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, जप कर रहे थे, कथा सुन रहे थे, स्मरण कर रहे थे। उन्हीं हरि हेतु करण तप लागे, बारी आधार मूल फल त्याग। फिर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए, उनसे भेंट करने के लिए तपस्या करने लगे, बढ़ाने लगे तपस्या। कंद मूल फल त्याग दिए और केवल जल पीकर रहते थे। इस तरह की तपस्या भगवान को पाने की लालसा है, और क्या लालसा है वो आगे बात आएगी। कि ये चाहते थे कि भगवान के समान हमें पुत्र मिले, मतलब भगवान पुत्र मिले, भगवान के समान दूसरा कोई भगवान है नहीं। तो कृष्ण को ही चाहते थे कि हमारे पुत्र बने। इस तरह से स्मरण कर रहे थे, पूरे अभिलाष निरंतर हो देखिए नयन परम प्रभु से। तपस्या के पीछे क्या उद्देश्य था, हृदय में हमेशा यही लालसा रहती थी कि कब इन आंखों से परम पुरुष भगवान का दर्शन करेंगे। पूरे अभिलाष निरंतर हो देखिए नयन परम प्रभु से, परब्रह्म भगवान को देखने के लिए अभिलाषा हो रही। अगुण अखंड अनंत अनादि जही चिंतन परमारथवादी। जो प्रभु अगुण है, प्रकृति के गुणों से परे है, अगुण अखंड है, अनंत है, अनादि है, जिनका ज्ञान कभी बाधित नहीं होता और जिनके रूप गुण सौंदर्य आदि की कोई तिष्ठ नहीं है, जो परिपूर्ण है, ब्रह्म है, और जही चिंतन परमारथवादी, परमार्थवादी उन्हीं का चिंतन करते हैं। देखिए कितना सुंदर शब्द है। लोग ये समझते, आजकल परमार्थ शब्द का उच्चारण कीजिए तो कुछ लोग समझते हैं निर्विशेष निराकार ध्यान करना ये परमार्थ नहीं। जही चिंतन ही परमार्थवादी, उसको आंख से देखने की लालसा हो रही है, उसी का चिंतन परमार्थवादी करते हैं। भगवान के सुंदर स्वरूप का चिंतन करते हैं, उसको हम देखना चाहते हैं। नेति नेति जही वेद निरूपा, वेद जिनको नेति नेति कहता है वो प्राकृत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, वो दिव्य है। इस तरह से प्राकृतत्व का निषेध करता है वेद। और जो निजानंद निरुपाधि अनुपा, जो अपने ही आनंद में रहते हैं, अपने स्वरूप के आनंद में या भक्तों के साथ आनंद लेते हैं, जो निरुपाधि है, प्रकृति के संसर्ग से शून्य है और अनुपम है, एक ऐसे प्रभु को हम देखना चाहते हैं। इसके लिए वे जप कर रहे थे, तप कर रहे थे। यहां तक कहते हैं शंभु विरंच विष्णु भगवान ना उपजन जाते सत्यनाम। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भी जिनके अंश से उत्पन्न होते हैं, उनका मैं दर्शन करना चाहता हूं। यह सिद्धांत है वास्तव में। भगवान श्रीहरि विष्णु ये भी भगवान के अंश हैं, श्रीहरि के अंश हैं, ऐसे कहते हैं। लेकिन इतने महान होने पर भी ऐसे प्रभु सेवक बस अहै भगत है तो लीला तम गहै। तो ऐसा महान होने पर भी प्रभु भक्तों के वश में है, सेवक बस अहै, अपने सेवक के वश में होते हैं प्रभु, और भक्तों के लिए उनको सुख देने के लिए लीला शरीर ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते प्रकट करते हैं। ये भागवत में कई बार बात है, अपना स्वरूप भगवान प्रकट करते हैं भक्तों के लिए। वास्तव में असुरों का संहार और पृथ्वी का भार दूर करना है तो वो संकल्प से कर सकते हैं, लेकिन भक्त उन्हें देखना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनको छूना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, झूला झुलाना चाहते हैं, बलवाही देना चाहते हैं। ऐसे तो भक्तों के हित के लिए वे अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। इसके बाद मनु महाराज कहते हैं, जौ यह वचन सप्त श्रुति भाषा तो हमारे पूछ लिया अभिलाष, यदि यह बात वेद बिल्कुल सत्य कहता है तो हमारी अभिलाषा कभी पूरा करे। एक अद्भुत बात है, कहते हैं कि यदि वेद का यह वचन सत्य है, इस तरह की बात भागवत में भी है, वेद के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते, फिर भी ये कहने की एक रीति है कि यदि वेद सत्य बोलता है तो भगवान हमारी अभिलाषा जरूर पूरा करेंगे, हमारे आंखों के सामने जरूर प्रकट होंगे। यही विधि बीते बरस सत सट सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस पुनि रहे समीर आधार। 6000 वर्ष तक इस तरह से भजन किए पानी पीकर, केवल कन्नमूल तो बहुत पहले छोड़ दिए थे, 6000 वर्ष तक केवल जल पीकर के भजन किए। भजन में वही कथा सुनना और जप करना, जप करना और कथा सुनना, यही भजन है। अच्छा, 6000 वर्ष और 7000 वर्ष जल छोड़ करके रहे समीर आहार, फिर हवा पी करके रहे 7000 वर्ष, इसे कैलकुलेट करके लिखा गया, ऐसा नहीं कि अंदाज से लिख दिया, नहीं तो कई लाख वर्ष कह दिया जाता है, कह दिया जाता है। 6000 वर्ष पानी पीकर केवल, और वो भी रोज पानी नहीं पीते थे, और 7000 वर्ष केवल सांस लेकर पानी में, वर्ष सहस बस त्यागे उसको, और 10000 वर्ष उसके बाद वो सांस लेना भी बंद कर दिए, हवा खाना बंद कर दिए, और एक पैर से दोनों खड़े हो गए। मनु महाराज और शत्रुघ्न ठहरे रहे एक पल, दो पैर से भी नहीं खड़े, एक पैर से खड़े हो गए। भगवान को पाने के लिए अगर कोई इतना कष्ट करे, क्यों नहीं भगवान इसके पुत्र बनेंगे, मित्र बनेंगे, वो आ जाएंगे। इस तरह से भजन किए। तो विधिहरि हर तप देखी अपारा, मनु संगे पे आए बहुबारा, मानो बल बहु भांति लोभाए, परम धीर में धर चला ही चलाए। तो ब्रह्मा जी आते थे हंस पर चढ़ करके, भगवान भी आते थे गरुड़ पर चढ़ कर, और शिव जी भी नंदीश्वर पर आते थे, तो पश्चिम कर रहे थे खड़े होकर के। शरीर बिल्कुल सूख गया था, केवल हड्डी मात्र रह गया था शरीर में, और कुछ नहीं था। तो मान लो हूं बर, वे तीनों आते थे, कहते थे बर मांगिए, बर मांगिए, हम बड़े प्रसन्न हैं, आप बर मांगिए, लेकिन परम भीड़ नहीं चल रही थी। मांगो हूं बर बहु भांति लोभाए, बहुत लोभ दे रहे थे, बर मांगिए बर मांगिए, लेकिन नहीं दिए। वो तो चाहते थे कि भगवान हमसे कहे कुछ और ले आवे, मतलब परम पुरुष परब्रह्म भगवान आवे। अस्थि मात्र हो रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं तीरा। अस्थि मात्र केवल शरीर में था, फिर भी मन में कोई पीड़ा नहीं थी। तो प्रभु सर्वज्ञ दास निज जाने, प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, सबके हृदय की जानते हैं। और ये देखे कि दोनों राजा और रानी तपस्वी हैं, मेरे लिए इतना कष्ट सह रहे हैं, तो उनका हृदय द्रवित हो गया और आकाशवाणी हुई, मांगो मांगो पर भय न भवानी, परम गंभीर कृपावृत सानी। कृपा रूपी अमृत से सानी हुई वाणी थी, सिक्त वाणी थी, भगवान बोले, साकेत बिहारी भगवान बोले। मांगो मांगो क्या चाहते हो, ऐसी आवाज थी। परम गंभीर, बहुत गंभीर, सरस और कृपामृत से सनी हुई वाणी थी। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र वही उर्जव आई, हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, मानव अब ही भवन ते आए। जो शरीर सूख कर हड्डी मात्र हो गया था, लेकिन भगवान की मृतक जियावनी गिरा, मरे हुए को जिलाने वाली वाणी जब मनु महाराज के शत्रुपा के कान में आई, तो हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, मानव अब ही भवन ते आए। एकदम शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया, ऐसा लगता था कि आज ही घर से आए। जब घर से आए थे तो राजा थे, बहुत अच्छा खाए पिए थे, बिल्कुल स्वस्थ थे। भगवान की जो वाणी है उसमें अमृत है, उस वाणी को जब सुने मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर्जव आई, जब कान के छेद से हृदय में वाणी आई, तो शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। देखिए भगवान की अद्भुत लीला, उनके वाणी में शरीर को एकदम क्रिश करने की भी शक्ति है। जैसे गोपीजनों को बोले, रुक्मिणी को बोले, तुरंत दुगुनी हो गए। अगर वो उपेक्षा का वचन बोल दे, नहीं नहीं हमको कोई जरूरत नहीं, तुम लोग घर लौट जाओ, ये लौट जाओ, बस सुनते क्षण भर में दुगुनी हो गए। और यहां वर्णन किया जा रहा है, भागवत में वर्णन है, कौतम जी के बच्चन कानों में जब भगवान की वाणी आई तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। भगवान की वाणी कैसी है, मृतक जियावनी। अरे अस्वस्थ को स्वस्थ कर दे, ये कौन बड़ी बात है, मरे हुए को चिल्लाने वाली वाणी, मृतक जियावनी। और ठीक यही शक्ति श्रीमद् भागवत के शब्दों में है। ये तो भगवान बोलते हैं, भगवद्गीता भगवान बोले हैं, लेकिन उनके बारे में जो सुखदेव गोस्वामी आदि महापुरुष बोलते हैं, वह भी अमृत, वह भी मृतक को जिलाने वाली, मरी हुई कृष्ण भावना फिर लहलहा जाती है। हरि बोले, ये भागवत सुनी, ये भगवान के बारे में जो शब्द बोला जाता है, भगवान स्वयं जो बोलते हैं, क्या कहना। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र वही मिल जब आई, हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, मानव अब ही भवन ते आए। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गा बोले, मनु करी दंडवत प्रेम न हृदय समाय। जब इस वचन को मनु महाराज ने सुना तो शरीर में पुलक छा गया, प्रफुल्लित शरीर हो गया, बहुत सुंदर। और दंडवत करके मनु महाराज बोले, भगवान अभी प्रकट नहीं हुए थे, अभी उन्होंने आकाशवाणी किया था, उस आकाशवाणी को सुन करके दंडवत प्रणाम करके बोले, सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेनु। हे अपने सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु, आप सुनिए, श्रृणु श्रृणु को ही सुनु कहा जा रहा है हिंदी में। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु। ये है भक्त का भाव अनुभव। भगवान अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उनकी वाणी आ गई, उसी से रियलाइज कर लिए कि भगवान की वाणी है। तो कहते हैं सुनो सुनो, हे प्रभु सुनिए, सुर तरु सुर भेनु, सेवक सुर तरु सुर भेनु, अपने सेवक के लिए, दास के लिए आप सुर तरु हैं, कल्प वृक्ष हैं, और सुर भेनु काम भेनु हैं। भक्तों की सारी इच्छा पूरी करते हैं, जैसे कल्प वृक्ष अपने आश्रय में आए हुए की इच्छा पूरा करता है, वैसे ही जो आपके दास हैं, सेवक हैं, उनकी आप इच्छा पूरी करते हैं, तो आप मेरी भी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। काम धेनु और कल्प वृक्ष दोनों इच्छा पूरी कर देते हैं। तो भगवान अपने सेवकों के लिए, अपने भक्तों के लिए सुर तरु है और सुर धेनु है। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु, और आपके पद रेणु की वंदना, चरण भूमि की वंदना ब्रह्मा विष्णु और शिव करते हैं। विधि हरिहर वंदित पद रेणु, अथवा हरिकार इंद्र भी कर सकते हैं, इनके द्वारा आपके चरण कमल के वंदना होती है। बहुत सुंदर भगवान का विशेषण दे रहे हैं, सेवतस सुलभ सकल सुखदाय प्रमत पाल सचरा चरनाय। सेवत सुलभ, आप बिल्कुल सुलभ हैं किसी के लिए। यदि कोई व्यक्ति आपके प्रति सेवा की भावना रखे, आपको अपना माने, तो आप उसके लिए बिल्कुल सुलभ है, सेवक सुलभ। और सकल सुखदायक, आप सारा सुख देते हैं। यहाँ सारा सुख से तात्पर्य भक्ति का सुख, सबसे श्रेष्ठ सुख वो है। आप सब सुख देते हैं और चर अचर सबके नायक हैं, और प्रणत पाल, आप अपने शरण में आए हुए का पालन करते हैं। प्रणत पाल सचराचर नायक, जो अनाथ हित हम पर मेह, यदि हमको दीन समझकर आप हम पर वास्तविक स्नेह करते हैं, तो प्रसन्न हो यह वर दे, आप हमको यह वर दीजिए। आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि वर मांगो वर मांगो, तो मनु महाराज कहते हैं कि हमको ये वर दीजिए। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही, जो भूसुंदी मन मानस हंसा, अगुन सगुन जही निगम प्रशंसा। जो स्वरूप शिव जी के हृदय में रहता है, भगवान श्री राम के उपासक हैं शिव जी, जो आपका स्वरूप शिव जी के हृदय में बसता है, और का भूसुंदी जी के मन रूपी सरोवर में राजहंस की तरह जो खेलता रहता है। देखा ही हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रण तारतिमो। हम वो रूप आपका देखना चाहते हैं, हम हरि लोचन आंख भर करके नख से सिख तक, सिख से नख तक आपको देखना चाहते हैं। ये प्रणत के दुख को दूर करने वाले, अपने दासों के दुख को दूर करने वाले, आपको नहीं देखने की मुझे बहुत पीड़ा है, आप हमारे आंखों के दर्द को भर लीजिए, आप हमको दर्शन दीजिए। इस तरह से कहने लगे, तब आई आगे कहते हैं, देखा ही हम स्वरूप भल लोचन, कृपा करो प्रणता रहते लोचन। इस बात को सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। दंपति वचन परम प्रिय लागे, पति पत्नी की बात को जब भगवान ने सुना, मनु महाराज और शत्रुता के, परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। इतनी सुंदर बात थी, एक तो मृदु और विनीत और प्रेम रस से पागा हुआ है। जब लोगों ने देखा जिलेबी सीरा में पकाया जाता है, जला जाता है, पागना करते पागे, प्रेम रस में पका पागा है सिख बिल्कुल। ये गुलाब जामुन को जैसे डालते हैं चीनी के रस में, या पुआ बना करके डालते हैं जिलेबी, इस तरह से वाणी इतनी सुंदर थी कि भगवान तृप्त हो गए, बहुत उनको अच्छा लगा। वाणी की विशेषता थी मृदुल, बहुत कोमल और विनीत नम्र भाव से, और प्रेम से सिख प्रेम रस पागे। भगवान इस तरह से सुने, तो ये बात सुन करके उसी समय प्रकट हो गए। पहले तो वाणी बोले थे, लेकिन अब प्रकट हो गए मनु महाराज के लिए। भगत वचन प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रकटे भगवान। वो तो विश्ववास है, सब जगह विश्व में है, अपने भक्त के लिए श्री भगवान प्रकट हो गए। कैसा रूप है भगवान का, उसका बहुत सुंदर वर्णन दिया गया है। नील सरोरुह नीलमणि, नील नील नीलधर श्याम, लाज ही तन सौभानी रखी कोटि कोटि सत्कार। शरीर कैसा कैसे उपमा दे रहे हैं, जब मनु महाराज ने देखा तो सब नील नील धर नील सरोवर भगवान ऐसे लग रहे थे जैसे नीला कमल है, उस पर भी संतोष नहीं हो रहा है। नील सरोवर नील मणि नील कमल तो सुंदर होता है लेकिन उसकी कीमत नहीं होती है, कोई बहुत भारी कीमत नहीं। तो फिर कहते नील मणि, ऐसा लग रहा था नीले मणि, नील मणि भी दुखा सुखा रहता है, उसमें कोई प्रेम करने की भावना नहीं रहती है, सरस नहीं रहता। तो नील नील धर से तो नील बादल से उतना दे रहे हैं भगवान का ये कहीं श्री विग्रह हो, नील सरोवर नील मणि नील नील धर श्या लाज ही तन शोभा कोटि कोटि सत्कार। भगवान जो सौंदर्य को देखकर उस शरीर को देखकर सैकड़ों सैकड़ों करोड़ कामदेव लज्जित हो रहे, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष स्वभाव, एक कामदेव नहीं कोटि कोटि सैकड़ों कोटि कामदेव लज्जित हो रहे, इतना सुंदर भगवान प्रकट हुए, सीता जी के साथ प्रकट है। नील सरोवर नील मणि नील नील धर श्याम लाज ही तन शोभा रखी कोटि कोटि सत्कार। अब मनु महाराज देख रहे भगवान के मुख से लेकर के चरण तक, उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। भक्तों को बहुत ही सुख देने वाला वर्णन है, भगवान के अंग का वर्णन है। रामचरितमानस में देखेंगे कि भगवान के अंगों का कैसा वर्णन है, प्रायः कुछ लोगों को इसका पता नहीं है अतः उनकी श्रद्धा नहीं होती, परंतु देखिए या सुनिए कि क्या वर्णन है भगवान। शरद मयंक बदन छवि सेवा चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, मुख से चालू किया इसको सिख नख वर्णन करते कहते हैं। शरद मयंक, मयंक मान चंद्रमा, शरद कालीन चंद्रमा के समान बदन छवि की सीमा है, केवल उपमा के लिए थोड़ा चंद्रमा से उपमा दे रहे हैं, लेकिन कहते छवि की सीमा सौंदर्य की सीमा, इससे अधिक सौंदर्य हो ही नहीं सकता है। बदन मयंक बदन छवि से बदन है भगवान का मुख है, शरद कालीन चंद्रमा के समान छवि की सीमा है, चारु कपोल गाल बहुत सुंदर है, चारु माने सुंदर, चारु कपोल चिबुक, उनका चिबुक बहुत सुंदर है जो मुख के नीचे है, चिबुक चिबुक बहुत सुंदर है, गाल बहुत सुंदर है, और दर ग्रीवा, दर माने शंख, और भगवान की जो गर्दन है वो शंख के आकार की है, उसमें तीन रेखा हुई है, बहुत सुंदर गोल मटोल गर्दन, ये वर्णन किया जा रहा है। दर ग्रीवा मतलब शंख ग्रीवा, बहुत सुंदर ग्रीवा है। कपोल चिबुक और शंख कंठ, इसका वर्णन किया गया। शरद मयंक बदन छवि सेवा चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, तीनों में चारु लगेगा, चारु कपोल चारु चिबुक और चारु दर ग्रीवा शंख ग्रीवा। अभर अरुण रद सुंदर नासा, अधर अरुण भगवान का अधर उनका ओष्ठ स्वाभाविक ही अरुण है, लाल है, इस पर लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही अरुण अधर, अरुण अधर रद सुंदर नासा विधु कर कर विनिंद कहासा। लाल लाल अधर है और सुंदर दांत है, रद माने दांत, दांत बहुत सुंदर है और नासा नासिका बहुत सुंदर है। अधर अरुण रद सुंदर नासा विधु कर निकर विनिंद कहा आशा,
और हंसी ऐसी है जो मुस्कुरा रहे हैं भगवान श्री राम,
तो मुस्कुराहट ऐसी है कि वो चंद्रमा के किरण बृंद को निंदित कर देते, मतलब वो उसके आगे फीका है।
विधु कर चंद्रमा की किरणों का विनिंदक,
विशेष निंदक, अर्थात चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा का प्रकाश क्या अवसर लगेगा, से बहुत गुना अधिक अच्छा लग रहा है भगवान की हंसी।
विधु करण कर विनिंद और नयधर रब सुंदर नाशा, विधु करण कर विनिंद कहाशा।
अब आंख का वर्णन करते,
नव अम्बुज अम्बक छबिनीकी चितवनी ललित भारती जी की।
अम्बक कहते हैं आंख को अवधि भाषा में, अम्बक। अम्बक कैसा है, नेत्र कैसा है, नव अम्बुज नवीन खिले हुए कमल के समान आंख,
कमल से ही तो उपमा दी जाएगा, क्या है दूसरा उपमा दिया जा सकता है। नव अम्बुज अम्बक छबिनीकी,
नव अम्बुज की तरह, कमल की तरह भगवान के नेत्र हैं, बहुत सुंदर, और चितवनी ललित भारती जी,
और चित्तों में आंखों से इधर उधर देखना,
मनु महाराज पर कृपा पर चढ़ा,
वो तो हृदय को अत्यंत सुंदर लग रही है,
भारती बहुत अच्छी लग रही है देखना।
भृकुटी मनोज चाप छबिहारी तिलक ललाट पटल ज्योतिकारी,
और भृकुटी कैसी है, भगवान श्री राम की भाव है जो आंख के ऊपर,
वो कामदेव के धनुष की छवि को छीन लेती है,
हारी हरण कर लेती
है। कामदेव का बाण भी पुष्प का है और धनुष भी पुष्प का है,
तो कामदेव को मनोज कहते हैं।
भृकुटी मनोज चाप छवि हारी,
चाप मतलब धनुष,
छवि सौंदर्य, हारी में हरी,
भगवान की भाव ऐसी है
जो कामदेव के धनुष की शोभा को निरस्त
करे। कोई देखा होगा तब तो समझे,
तो कामदेव का धनुष कहां कोई देखे,
उसके धनुष की भी शोभा को भाव फीका कर रही।
भ्रिकुटी मनोज चाप छबिहारी तिलक ललाट पटल ज्योतिकारी,
और तिलक ललाट पटल पर इतना सुंदर लग रहा है,
भगवान के ललाट पर तिलक होने से तिलक सुंदर लग रहा है,
यानी कि ललाट ललाट इतना सुंदर है, उस पर तिलक जो है वो बहुत सुंदर लग रहा है।
आगे वर्णन करते हैं, कुंडल मकर मुकुट शिर भ्राजा, कुंडल मकर मुकुट शिर भ्राजा, कुटिल के सजन मधुप समाजा।
कुंडल मकर, कुंडल कैसा है, मकराकृत, मकर के आकार का है, मगर के आकार झूल रहा है, भ्राजक इसमें भी लगेगा,
और कुंडल श्रवण मुकुट शिर भ्राजा,
और सिर पर मुकुट चमक रहा है,
सिर भ्राज,
सिर पर मुकुट चमक रहा है, कानों में कुंडल झूम रहे हैं,
और कुटिल केश जनु मधुप समाजा,
घुंघराले केश जो मुकुट से नीचे दिखाई पड़ रहे हैं,
वो लगता है कि भंवरों का समाज बैठा है भगवान के मुख कमल को पीने के लिए,
उनका मुख कमल के समान है, और इस कमल पर जैसे भंवरे बैठते हैं ऐसे लगता है कि भंवरे इस कमल का पराग पीने के लिए जुटे हुए हैं।
उर श्री वत्स रुचिर वनमाला,
और उर पर बाएं वक्षस्थल पर श्रीवत्स है, बहुत सुंदर लग रहा है, रुचि
उर श्री वत्स रुचिर वनमाला,
रुचि सब दोनों ओर लगेगा, दैवी दीपक न्याय से। हृदय पर सुंदर श्रीवत्स और सुंदर वनमाला, वनमाला मतलब फूल की माला, पूरे श्रीवत्स रुचिर वनमाला पदिक हार भूषण मणि जाला। पदिक हार, हार जो है वो जड़ा हुआ है अनेक मणियों से, मणि के जाल ही पहने हैं। मणि जाल मतलब अनेक मणि, अनेक प्रकार की मणियां हैं उसे मणि जाल। के हर कंधर चारु जनेऊ, और कंधा ऐसा है जैसे सिंह का कंधा, चौड़ा छाती चौड़ी, कंधा चौड़ा है बहुत सुंदर, और उस पर सुंदर जनेऊ लगाए हैं भगवान। चार जनेऊ जब तभी धारण किए। के हर कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर ते, और बाह पर बहुत से गहना बांधे लगाए हुए हैं, बाह पर गहने बहुत सुंदर लग रहे हैं। करी कर सरी सुभग भुज कटिनी संग कर सर को दंडा, करी कर सरी सुभग भुज दंडा, और भगवान का भुजदंड कैसा है, पूरा बाह ये हाथी के सूंड के समान, हाथी का सूंड इधर से मोटा होता है तो इधर पतला होता है, करी कर सरी, हाथी का बच्चा हो उसके सूंड देखने पर इतना सुंदर लगता है। तो करिकर शरीर सुभग भुजदंड, सांवला है ही शरीर, तो करिकर शरीर सुभग भुजदंड, सुंदर भुजदंड, करी के कर के शरीर सर से तो समान, करी के कर के समान, हाथी के हस्त के समान, बहुत सुंदर लग रहा है। और कटी निशंग कमर में तरकस बांधे हैं बांध रखने के लिए, और सर कर को दंडा, एक हाथ में धनुष लिए है और दूसरे में बाण से प्रकट हुए हैं, तो इस तरह से भगवान श्री राम प्रकट हुए। सर को दंड, कोदंड मतलब धनुष और सर मतलब बाण, हाथ में धनुष बाण लिए हैं और कमर में तरकस। पड़ित बिनिंदक पीत पट, कपड़े का वर्णन कर रहे हैं, कपड़ा कैसा है, पीत पट पीतांबर पहने, वो पीतांबर कैसा है, बिजली का निंदक, पड़ित बिनिंदक, बिजली उसके सामने क्या होगी, इतना सुंदर चमक रहा है बस। तड़ित बिनिंदक पीत पट, तड़ित की निंदा करने वाला मतलब उसको फीका करने वाला, बिजली के छवि को भी निरस्त कर देने वाला पीत पट है, शरीर पर नीचे जो पहने हैं चाहे ऊपर से दुपट्टा रखे हैं। तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बरती, और उदर बिल्कुल पतला है भगवान का, बहुत पतला है सिंह, कंधा तो सिंह के समान है, इधर बहुत चौड़ा है और पेट बहुत थोड़ा है। ये गलत शरीर का वर्णन, गलत शरीर होता है जो ऊपर छीर हो और पेट खूब निकला हो, आजकल के लोगों का ऐसे ही चल रहा है ज्यादा। हाथ पैर बिल्कुल पतला पतला, यहां पतला पेट भोंदू मल का, भगवान का ये सौंदर्य वर्णन किया। रेख बरती, तीन रेखा है पेट पर, बहुत सुंदर, और नाभि कैसी है, वो नाभि मनोहर लेत जनु जमुन भंवर छंछीर, और मनोहर नाभि भगवान की ऐसी सुंदर लग रही है, नाभि इतना सुंदर लग रहा है कि जमुना के भंवर की शोभा को ही छीन लेता है, जमुना जी में भंवर बहुत सुंदर पड़ती है। हमने जब इस उद्गार को पढ़ा था गोस्वामी तुलसीदास का, एक बार जब भारत यात्रा में चित्रकूट गया था, चित्रकूट जाने में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थान पड़ता है, रास्ते में प्रयागराज से चलने पर राजापुर गांव के पास, तो जमुना को मैंने वहां देखा है। वहां पर इसको मैं देखने लगा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम भी जमुना के भंवर की छवि को छीन लेता है, तो देखे जमुना में भंवर कैसी पड़ती है। वहीं पर मेरे मन में आया, उन्होंने देखा होगा इधर जरूर, तो वास्तव में भंवर ऐसे बहुत ही गोलाकार पड़ती है, गंगा में भी पड़ती है, लेकिन गंगा जी में गंगा जी का जो पानी है वास्तव में वो सांवला नहीं है, गोरा पानी है, वो धवल पानी है, और जमुना जी का पानी सांवला है, भगवान के शरीर का रंग भी सांवला है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि ना भी मनोहर लेत जमुन भंवर छिन्न, मनोहर ना भी ना अच्छा है कि वो जमुना के छवि को छीन लेता है, मतलब उससे भी अधिक सुंदर। तरित विनिंदक पीत पट उदर रेख वर तीन ना भी मनोहर लेख जमुन जमुन भंवर छवि छीन, ये है भगवान के रूप का वर्णन। और अब चरण में उतर आए, चरण में उतर करके कहते हैं पद राजीव वरन नहीं जाही मन मधुर पाप सहिजे नमा। और पद राजीव, राजीव मैंने कमल, चरण कमल का तो वर्णन कर ही नहीं सकता, ये हमें शक्ति नहीं है वर्णन करने का, उधर तो कुछ किया भी, क्योंकि वो भी सब वर्णन से अतीत ही किए, लेकिन कुछ वर्णन तो करना चाहिए ना, इसलिए वर्णन किया। चरण कमल के विषय में कहता है पदरा जीव वर्णन नहीं जाए, तो वर्णन किया नहीं जा सकता। मुनियों का मन रूपी हंस सदा भ्रमर वही रहता है, मुनियों का मन मधुर भ्रमर सदा भगवान के चरण में रहता है। सरंगरंग पदान विजय, भगवान के भक्त जो दास भाव से भक्त है भगवान के चरणों का ज्यादा चिंतन करते, तो मुनियों का मन रूपी भावरा तो भावरे तो वही मरराए रहते, इतना सुंदर है। इस तरह से भगवान श्री राम का वर्णन किए। अब ये कहते हैं कि भगवान राम के साथ सीता जी भी प्रकट हुई थी, आदि शक्ति जग छविधि जग मूला राम भाव वाम भाव शोभती अनुकूल आदि शक्ति सब निधि जग मूला। भगवान के बाएं भाग में समस्त सौंदर्य की निधान, सौंदर्य का निधान श्री सीता जी शोभित हो रहे हैं, जिनके अंश से असंख्य मच्छी ब्रह्मानी और रुद्राणी पैदा होती है, वे सीता जी भगवान के बाम भाग में हैं। छवि समुद्र हरिरूप विलो की एकटक रहे नयन पट रोकी, मनु महाराज और शत्रुपा दोनों अपने नयन पट को रोक कर, नयन पट मतलब पलक निमेश, इसको नयन पट कहते हैं, नयन पट, इस नयन पट को रोक करके और एकटक देखने लगे भगवान को। एकटक, टक का मतलब है जब आंख बिना बंद किए आदमी देखता है, बीच में गैप न जाए मतलब पलक न गिरे, उसको टक करके एक टक, एक टक देखने लगे और नयन पट रोक दिए। इतना इतनी सुंदरता है कि नयन पट अपने आप रुक गए और देखने लगे। चितवन सागर रूप अनुपा तृप्ति न मान नहीं मनुष्य रूपा, एक टक देख रहे थे और तृप्ति नहीं मान रहे थे, देखते जा रहे थे देखते जा रहे थे। हर्ष विवश कर दशा भुला, इतना हर्ष हुआ कि शरीर की दशा भूल गए और दंडवत की तरह गिरे। दंड जैसे दंडा छोड़ने पर गिरता है ऐसे गिरे, ये गिरने के लिए उदाहरण दिया गया। चरण कमल को पकड़ धीरे दंडे की तरह चरण कमल में लेट गए, सिर पर से प्रभु निज कर कन जाए, तो भगवान श्री राम अपने करकंज से करकमल से उनको उनके सिर को छुए और इसके बाद उठाए, मनु महाराज को उठाए, तुरंत उठाए करुणा पुंज। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान, मांगो भर जो भाव मन महादानी हनुमान। फिर उठा करके कहे, मैं पूर्ण प्रसन्न हूं आपसे, आपके मन में जो भी इच्छा है वो मांगिए, मैं महादानी हूं। महादानी हनुमान, दुनिया में कोई भी देवता देने वाले हैं कुछ भी, लेकिन मैं जो देता हूं उतना कोई नहीं दे सकता, आप मुझे महादानी समझकर और संकोच छोड़ करके मांगिए। सुनि प्रभु बच्चन जोर जुग पानी धरी धीरज बोले मृदुबानी। ये बोली गलत छप गया, बोले है धीरज रह करके मनु महाराज बोले, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। आपके चरण कमल को देखकर हमारी सारी इच्छा पूरी हो गई, सारी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन एक लालसा बड़े उर्माही, एक लालसा है हमको, सुगम अगम कही जाते सुना। वो सुगम भी है अगम भी है, ऐसे मिलना मैं विश्वास करता हूं कि मिल जाएगा, लेकिन दूसरे दृष्टि से विश्वास करता हूं नहीं मिलेगा, शायद आप भी नहीं देंगे। एक लालसा है, तुम ही वेद अति सुगम घुस है, सुगम आपके दृष्टि से है, आप इतने दानी हैं और सर्वज्ञ हैं, अपने को कई रूप में बदल सकते हैं, कर सकते हैं, आपके लिए सुगम है, लेकिन अपनी अयोग्यता देख करके मैं इसको अगम मान रहा हूं, वो नहीं मिलेगा। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई बहु संपत्ति मांगत स कुचाई। जैसे कोई महाकंगाल कल्प वृक्ष के पास जाए तो बहुत संपत्ति मांगने में संकोच करेगा, यदि कल्प वृक्ष सब कुछ दे सकता है लेकिन कंगाल व्यक्ति अब संकोच करेगा बहुत मांगने में, क्योंकि उसके प्रभाव को नहीं जानते, तासु प्रभाव चार नहीं सोए तथा हृदय मम संचय हुए। जैसे गरीब व्यक्ति को कल्प वृक्ष से मांगने में संशय होता है, ऐसे हमको संशय हो रहा है आप देंगे कि नहीं देंगे, हम मांगने जो है कि नहीं है। तो आप सोतुम जानहु अंतर्जामी पूर्वम मोर मनोरक्षण, आप अंतर्जामी है, सबके हृदय में रहते हैं, तो हमारे हृदय में क्या इच्छा है आप स्वयं पूरा कर दीजिए, मुझे मांगने में बड़ा शरम है, मांगने में शरम आए। भगवान कहते सकुच बिहाई मांग मृत मोन मोरे मही अदेय कछुत। हे महाराज, आप संकोच छोड़कर मांगिए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आपको न दे सकूं, मेरे लिए आपको अदेय कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ दे सकता हूं। तो जब ये आश्वासन पाए मन महाराज तब बोलते हैं, दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सती भाव चाहू तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। जब भगवान ने इतना खोल कर कहा कि नहीं हमारे आपके लिए कुछ भी अध्यय नहीं है, मैं सब कुछ दूंगा, तो कहते हैं हे दानी शिरोमणि हे कृपा निधि, मैं सबके बच्चों भाव व्यक्त कर रहा हूं, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभुषण कमन दुरा, मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूं, अब आपसे क्या छिपाना है, प्रभुषण कमन दुरा आप जैसा बेटा चाहता है। तो देखी प्रीति सुन वचन अमोले एवं अस्तु करुणा निधि बोले। यह प्रेम देख करके भगवान ने कहा ठीक ठीक एवं अस्तु यही हो, लेकिन महाराज आप शरीर से खोजो कहीं जाई, मैं कहां खोजूंगा अपने समान किसी को, कोई है ही नहीं, भगवान के समान कोई है ही नहीं, तो किसको खोजेंगे। आप शरीर से खोजो कहीं जाई निपटो तलय होग मैं आई, मैं ही आपका पुत्र बनूंगा, भगवान ने कहा। निपतो तमय भोग में आई, मैं आप आकर के आपका पुत्र बनूंगा। फिर शत्रुपा से कहे माता जी आप मांगिए, तो उन्होंने कहा कि जो जोबर नाथ चतुर निप मांगा सोई त्रिपाल मैया तो प्रिय लागे, वही पर हमको प्रिय है, जो राजा मांगे वही हम मिलते हैं। लेकिन फिर भी मांगे, उसने मांगा कि जो सुख है, जो गति आपके भक्तों की होती है, जो स्वभाव होता है, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई द्विज चरण समय सोई विवेक सोई रहमी प्रभु हम ही कृपा करी दे। रानी ने मांगा कि भक्तों में जो गुण है, जो सुख है, जो उनकी गति है, आपसे जितना प्रेम है और जो विवेक है, वो सब हमको दीजिए। ये मांगने के बाद तब मनु महाराज भगवान से एक और बात कहे। मनु महाराज ने कहा कि सुत भी सहित तो पदरति हो महिबूढ़ कहे कि हे प्रभु, जब आप मेरे पुत्र बने तो मेरे मन में केवल पुत्र भाव ही रहे। हमको भले दुनिया बेवकूफ कहे कि ये भगवान को बेटा मानता है, जो जगत के ईश्वर हूं स्वामी हूं उनको अपना पुत्र मानता है, हमको कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमारे मन में आपके प्रति पुत्र भाव ही केवल रहे। भगवत भाव न कभी नहीं, पुत्र भाव। मणि बिनु फणि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन किम तुम अभिना। और जैसे मणि के बिना सर्प नहीं जीवित रहता है, पानी के बिना मछली जीवित नहीं रहती है, उसी तरह से मेरा जीवन आपके बिना न हो, मेरा जीवन आपके अधीन हो, आप हमारे साथ रहो। कितना प्रेम हो पुत्र भाव से। और ये देखा गया है दशरथ जी के जीवन में, भगवान के वन जाते ही चार दिन के अंदर ही शरीर छोड़, उनके बिना नहीं जी सकते, ऐसा सत्य प्रेम था। कभी कभी नंद महाराज और मां यशोदा रोते रहते थे, कहते थे सच्चा भाव था महाराज दशरथ, हमारा बेटा तो मथुरा गया है, कई दिन बीत गया नहीं आया, फिर भी हम जी रहे हैं, धन है महाराज दशरथ राम के विरह में कुछ क्षणों में ही मर गए, जीवित नहीं। ये वर मांग रहे थे, तो भगवान ने उनको बताया ठीक है आप जाइए, आप स्वर्ग में इस समय जाइए, उसके बाद अयोध्या में आपका जन्म होगा, दशरथ के रूप में मैं आपका पुत्र बनूंगा अपने अंशों के साथ, क्योंकि मैं चार भाई है जन्म लूंगा। इस तरह से भगवान ने वर दिया और वही महाराज मनु अयोध्या में दशरथ जी के रूप में हुए और भगवान उनके पुत्र बने इसी रामनवमी को।